शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी के मन में एक उमंग रहता है, एक जिज्ञासा रहती है कि भाई कैसे विनाश होगा, कैसे स्थापना होगी। तो आज हम उसके गुह्य रहस्य को हम आपके शेयर करना चाहते हैं। जब दीदी ने अपना पुराना शरीर छोड़ा था और आज से 29 साल पहले, तो बाबा ने एक बहुत गहरा राज उनके डेथ के बाद संदेश में बहुत गहरी बात बताई थी। वो ये थी कि दीदी एक महीने तक बीमार रही थी, और जब दीदी एक महीने तक बीमार रही थी तो बाबा ने बताया कि दीदी अपने उम्र को, जहां वो पैदा होगी, जिस गर्भ में पैदा होगी, विकास से वो लोथरा तैयार होगा गर्भ में, और उसको दीदी अपने सकाश से उसको प्योर कर रही है। और बाबा ने बताया कि बाबा भी अपनी शक्ति स्पेशल उस उम्र पे लगा के उस गर्भ को प्योर कर रहे हैं। और उसके बाद जो ब्राह्मण लोग थे, जितने भी दीदी के लिए उस समय संगठन में दीदी की तबीयत के लिए योग कर रहे थे, तो उसका सकाश भी उस उम्र को जा रहा था। और दीदी जो जहां पैदा होगी, बाबा ने बहुत ये बात कही कि वो प्योर उम से, प्योर गर्भ से वो पैदा होगी, फुल बैटरी सोल। और ये सोल आने वाले समय में देवताओं के जन्म के लिए तैयार होगी। तो दीदी का जो पार्ट है वो विशेष पार्ट है, और वो फुल बैटरी सोल विथ प्योर उम, उसके जहां वो पैदा हुई भगवान की शक्ति से, उनकी शक्ति से और ब्राह्मणों की शक्ति से, तीनों शक्तियों से उसका ओम प्योर हुआ। और दीदी ने जहां भी जन्म लिया, आज 29 साल की दीदी जो भी है, वो सब जो भी आत्माएं हैं वो एडवांस पार्टी कहलाई। एडवांस पार्टी माना आने वाले समय में देवताओं को जन्म देने वाली, सत्युग की स्थापना में पूरी मदद करने वाली आत्माएं, जो स्थिर है, जो जिनका फुल बैटरी है, जिनका मन बिल्कुल अचल, अडोल, स्थिर चित, मतलब संपूर्ण संपन्न जो आत्माएं हैं, और ये पूरा विनाश का समय भी देखेगी। और ये आत्माएं विनाश में, मतलब अपनी योग की स्थिरता से, अपनी स्टेबिलिटी से, अपनी माइंड पावर की स्टेबिलिटी से पूरी धरती को स्टेबल करेगी। तो ये आत्माएं एडवांस पार्टी, बाबा ने उसका नाम दिया। और ये जो अभी हम आपको बता दें कि जो हालात बता रहे हैं कि हमारी दादियां संपूर्ण बन रही है, मतलब उसके बाद जितने भी लोग गए, जैसे चंद्रहास दादा है, प्रकाशमणि दादी है, मनोहर दादी है, शंतामणि दादी है, ये सब लोग जो हीरे गए हैं, जो अमूल्य रतन बाबा के, ये सब एडवांस पार्टी, मतलब कहीं ना कहीं जन्म लिए हैं, ये सब एडवांस पार्टी है। और आने वाले 25 सालों में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और स्थापना में इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये जो आपको हम बता दें कि अभी की जो सिचुएशन है कि भाई दो बार टर्न में बाबा नहीं आया, और बाबा से हमने अव्यक्त मिलन मनाया, मतलब ये सिग्नल है कि पढ़ाई वाइंड अप हो रही है, और पढ़ाई वाइंड अप हो रही है, और दादियां अपनी संपूर्णता की स्टेज पे, मतलब फुल ग्लो हो रही है। और जैसे ही दादियां संपूर्ण बनेगी, हमारी गुलजार दादी संपूर्ण बनेगी, संपन्न बनेगी, तो उसके बाद पढ़ाई फिनिश हो जाएगी। उसके बाद कोई मुरली वगैरह नहीं, बाबा को जितनी समझानी देनी थी वो बाबा ने अब दे दी। अब जो है क्या होगा कि जैसे ही दादी संपूर्ण बनेगी, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर छोड़ के परमधाम चला जाएगा, और यहाँ पे जो दीदी 29 साल की है, मान लो वो मेल है आइदर, और कोई फीमेल एडवांस पार्टी की सोल है, ये आपस में प्योर ओम से पैदा हुई, पवित्र गर्भ से पैदा हुई फुल बैटरी सोल्स, ये आपस में दृष्टि देंगे। और बाबा ने बहुत मुरलियों में और संदेश में बताया कि इन एडवांस पार्टी आत्माओं को बाबा सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर लेता है अमृत वेला और उनको ट्रेनिंग देता है दृष्टि देना और दृष्टि लेने की। तो ये आपस में दृष्टि देंगे और हमारे किसी भी शरीर में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमारे पास दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मतलब हमारे पास मेल हार्मोन भी है और हमारे फीमेल हार्मोन भी है। तो जब हम फुल बैटरी होते हैं, जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है और दृष्टि हम कैच करते हैं हम, जब हम, तो क्या होता है मेल और फीमेल आपस में दृष्टि देते हैं तो इतना खुशी में नाचते हैं, इतना खुशी में नाचते हैं कि हमारे वो हार्मोन्स एमिट हो जाते हैं और हमारा गैमेट बन जाता है और गैमेट फॉर्म होता है और वो गर्भ महल तैयार हो जाता है। 2500 साल तक हमारे गर्भ महल होगा और 2500 साल तक मतलब इस तरह से पैदाइश होगी। तो दीदी 29 साल की कहीं भी है, आइदर मेल चोले में आइदर फीमेल चोले में, मुझे नहीं पता, और दूसरा एक और सोल है, कोई भी फीमेल सोल है, आपस में दृष्टि देंगे और कृष्ण की आत्मा ऊपर से उस गर्भ महल में आएगी। हाँ, और जैसे ही उसके मतलब चौथे से पांचवें महीने में आत्मा एंटर होती है, तो आफ्टर 5 मंथ है ना, दादी के संपूर्ण बनने के बाद आफ्टर 5 मंथ कृष्ण का जन्म होगा। और जैसे ही कृष्ण का जन्म होगा, इस मधुबन में ही होगा और मधुबन में या मतलब 95% धरती की आबादी परमधाम चली जाएगी। कैसे जाएगी, इसके लिए भी आपको साइंटिफिकली समझना होगा कि कैसे जाएगी, क्योंकि अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है और ये 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मतलब जो टेम्परेचर होता है ना, उसको लपक लेती है और उसको पूरे में फैला देती है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में नहीं हो तो धरती चंद्रमा की तरह शीतल हो जाए, है ना, तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन ये कार्बन डाइऑक्साइड करती है, राइट। और अभी क्या हो रहा है, अगर मान लो ये कम हो तो धरती की तरह शीतल हो जाती है और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है तो धरती तप जाती है। तो अभी के सिचुएशन के अनुसार पूरी धरती में जितने भी इंडस्ट्रीज है वो 22 लाख टन गैसेस, उससे भी ज्यादा, मुझे इतना रफ आइडिया में बता रही हूँ कि उससे भी ज्यादा गैस कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं पर ईयर। और इससे क्या हो रहा है, धरती तप रही है। और दूसरा ये हो रहा है कि हम फ्रिज यूज करते हैं, हम एसी यूज करते हैं, तो उसमें 12 जहरीली गैस होती है, CFC-1 CFC-2 12 जहरीली गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो गैस होती है ये हमारी जो नीली परत होती है हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ ओजोन लेयर कहलाती है, वो हमें हानिकारक रेस से, सूरज की हानिकारक रेस से, सूरज की एक्स्ट्रा गर्मी से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इन गैस के यूज करने से क्या हो गया है, हमारी जो सुरक्षा कवच है, हमारी जो ओजोन लेयर है, उसमें छेद हो गया। तो इससे भी क्या हो रहा है कि सूरज की किरणें डायरेक्ट धरती पे गिर रही है। और तीसरी बात सूरज में ये हो रही है, सूरज तमो प्रधान हो गया। पहले सूरज बाहरी था, मतलब 16-17 डिग्री टेम्परेचर बाहरी मौसम होता था 2500 साल तक सत्युग त्रेता में हमारा, फिर धीरे 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 सूरज तमो प्रधान हो जाता है, उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। अभी सूरज में रोशनी कैसे पैदा होती है वो आप समझ लें कि हाइड्रोजन के फ्यूजन और फिशन से, मतलब हाइड्रोजन मिलता है और टूटता है, हीलियम बनता है फिर टूटता है, हीलियम बनता है और टूटता है, उससे सूरज गर्मी फेंकता है, राइट। अभी क्या हो रहा है, सूरज में ताकत नहीं रही है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का फ्यूजन और फिशन नहीं हो रहा है, हीलियम और हीलियम मिल रहा है आपस में, हीलियम और हीलियम मिलके बेरिलियम बन रहा है और बेरिलियम टूट रहा है और बेरिलियम का फ्यूजन और फिशन हो रहा है। इसलिए सूरज पहले से 4 गुना ज्यादा गर्मी फेंक रहा है। तो 3 तरह से धरती तप रही है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के हम जो इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन से, दूसरा ओजोन लेयर में छेद होने से, और तीसरा ये सूरज की तमो प्रधान होने से। तो ये जो जखीरे हैं, जितने भी बॉम्ब के जखीरे हैं, इसको कोई ओबामा या कोई जॉर्ज बुश या कोई ऐसा लीडर कोई बटन नहीं दबाएगा, क्योंकि कोई भी दबा देता है मान लो तो उसपे इतने करोड़ों लोगों की मौत का ये कर्म का हिसाब हो जाएगा, वो कैसे चुपचू करेगा। इसलिए कभी भी विनाश कोई करता नहीं है। ये जो सूरज में ये धरती जो तप रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उससे ये जो जखीरा है ये इसमें आग लग जाएगी। जैसे भोपाल गैस कांड हुआ तो रातों रात मतलब किसी को मालूम ही नहीं था और नींद में सोए थे और भोपाल गैस रिस गई, मतलब ऐसे ही ये धरती जो तप रही है उससे ये जखीरा, जो यूरेनियम का जखीरा पड़ा हुआ है इतना, चारों तरफ जो बॉम्ब्स बने हुए हैं वो सब क्या हो जाए, फट जाएंगे। और उसके फटने से क्या होता है कि अभी हम 45 से 55 डिग्री टेम्परेचर भी सेल्सियस हम सहन नहीं कर पाते हैं। उस समय धरती पे जैसे ही कृष्ण ने पांव रखा धरती पे, तो ये जखीरा फटेगा और उससे क्या होगा कि धरती पे 10 लाख डिग्री टेम्परेचर, यानी कि एक धरती पे नया सूरज उगाया यूं समझ लो, इतना टेम्परेचर हो जाए, मतलब धरती के परक्चे उड़ जाएंगे और उसमें जितने भी मेटल्स वगैरह सब पिघल जाएंगे सारी, और उसमें 10 लाख डिग्री टेम्परेचर में इतना मतलब जो दो पोल्स है हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसपे धरती टिकी हुई है जिसकी बर्फ में, राइट, वो बर्फ पिघल जाएगी। और उसके पिघलने से क्या होगा, 100 से 150 फीट मतलब समुन्द्र में लहरें आएगी, और ये जो कोस्टल प्रदेश है जैसे बॉम्बे है, ये सिडनी है, कलकत्ता है, मद्रास है, चाइना है, ये मलेशिया, ये सब तो ऐसे समा जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं, मतलब कोस्टल प्रदेश तो कोई दिखेगा ही नहीं, इतना समुन्द्र का लेवल पानी का बढ़ जाएगा। बाबा ने कहा है बॉम्बे सबसे पहले डूबेगा, धरती जलमयी हो जाएगी, राइट। तो ये जब जैसे ही ऐसा होगा तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है डिस्टर्ब हो जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, धरती मतलब जो पोल पे जो धरती टिकी हुई है, जो उनकी अक्ष स्थिर है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्ब होने से क्या होगा, पोलर ट्विस्टिंग हो जाएगा। पोलर ट्विस्टिंग का आइंस्टीन ने कहा कि ये पोलर ट्विस्टिंग एक बार नहीं कई बार हुआ है, ये धरती कई बार ट्विस्ट हुई है, और जिस ट्विस्टिंग के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं वो सेकेंड में हो जाएगा। सेकेंड में नॉर्थ पोल साउथ पोल ट्विस्ट हो जाएगा, परमधाम के गेट खुल जाएंगे और सारी आत्माएं ऊपर जाएगी। तो ये जो होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्ब होने से क्या होगा, हमारी स्टार वार होगी, मतलब हमारे जितने भी जो उपग्रह भेजे हमने सैटेलाइट में, उनके सबकी जो अक्ष है, जो उनकी मैग्नेटिक जहां स्टॉप मतलब ये उनके स्थिर किया हुआ है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। और 9 ग्रह में चुंबकीय तूफान आएगा और वो सारे जो ग्रह नीचे गिर जाएंगे, उसकी लेजर किरणें धरती को राख कर देगी। और ये भारत में सिविल वार होगा, खून की नदियां बहेगी, हड्डियों का कीचड़ होगा। और इस सारी घटना से अभी एक और साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार बताया कि नॉर्वे में 200 फीट के नीचे इतना सोना है कि पूरी धरती सोने की हो जाए। तो ये जो गर्मी पड़ेगी और ये जो जितना चेंजेस होगा उससे वो सारा सोना पिघल के भारत की तरफ आएगा और भारत में सोने के पहाड़ बन जाएंगे। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है उसको समुन्द्र भारत की तरफ, मतलब भारत की तरफ वो लग जाएगा और सारी खानियां भरतू हो जाएगी। और ये जो कीचड़ बनेगा, ये जो खून की नदियां बहेगी और ये जो हड्डियों का कीचड़ होगा, उससे धरती इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि धरती स्वयंभू हो जाएगी। मींस उसमें उगाना नहीं पड़ेगा कि आपको बीज उगाना पड़े और खेती करनी पड़े और उसमें कुछ डालना पड़े, खेत वगैरह, खाद वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। स्वयंभू मींस इतने खुशबूदार पौधे, इतने रसीले पौधे, भारत इतना सुंदर बन जाएगा कि स्वर्ग, जिसको स्वर्ग के लिए जितनी गाथाएं लिखी हुई है, चाहे शास्त्रों में लिखी हुई है, पुराणों में लिखी हुई है, कुरान में लिखी हुई है, चाहे बाइबल में लिखी हुई, सब जगह जो स्वर्ग की जो महिमा लिखी हुई है, वो स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। और इस सारी घटना में हमारी मन की स्थिरता से, जो हमारे मेडिटेशन की पावर होगी, जो हमारी मन की स्टेबिलिटी होगी, जो हमारी तपस्या की पावर होगी, हमारी मन की स्थिरता से ये वापस 9 ग्रह रीसेट होंगे अपनी कक्षा में। और हमारी स्टेबिलिटी से, हमारी मन की स्थिरता से ये धरती वापस सीधी हो जाएगी। अभी क्या है, झुकी हुई है, तो अपने को सर्दी गर्मी बरसात, ये द्वापर के बाद ये मौसम होते हैं। और धरती सीधी हो जाने से क्या होगा, हमारा टेम्परेचर जो है बाहरी मौसम, मतलब 16-17 डिग्री के मतलब एकदम नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। और ऐसे में दो भाग हो जाएंगे, दो भाग हो जाएंगे, एक जगह जय जयकार और एक जगह हाहाकार। यहाँ तो कृष्ण पैदा हो गया तो उसको मतलब खूब खुशियां मनाएंगे और मतलब तपस्या, अनंत तपस्या करेंगे, और यहाँ दृष्टि का खेल चलेगा, यज्ञ किला बन जाएगा, और यहाँ पे एक भी विकारी इंसान नहीं बचेगा, मतलब जिंदा ही नहीं बचेगा, सिर्फ हंस ही हंस रहेंगे सब, संपूर्ण निर्विकारी, प्योर पावरफुल सोल, परफेक्ट विल, फुल बैटरी विल, विद प्योर यूम से पैदा हुई सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं, आपस में दृष्टि का खेल चलेगा, और ऊपर से धनादन धनादन देवताओं का आना चालू हो जाएगा। यज्ञ में देवताओं के माँ बाप और देवताएं रहेंगे, और उधर जो बाकी जो थोड़ी बहुत सोल बची है वो लोग में एक जन्म की जो ऊपर से अब भी नई आत्माएं आती है, वो आत्माएं जो थोड़ी स्ट्रांग होगी वो बच जाएगी, और वो आत्माएं मतलब यज्ञ के लिए, मतलब इन देवताओं के लिए महल बनाएगी। इस तरह से ये 25 से 40 साल तक वापस इस धरती को स्टेबल होने में लगेगा। तो अभी हमारे पास समय कितना बचा है आप खुद ही सोच सकते हैं, कि 2012 और 13 जो बताया, 12 तो एंड हो ही रहा है, और जो 13 का जो समय है ये बहुत ही पावरफुल चेंजेस लाएगा, और इस समय सबसे ज्यादा हमारा जो पेपर आएगा वो है इविल सोल से आएगा। जब हम मरते हैं नीचे से हमारी एनर्जी विथड्रॉन होती है और हमारी आत्मा यहाँ से निकलती है मस्तक से, और 12 दिन में हम कंसीव हो जाते हैं, 12 दिन में हमारा नया जन्म हो जाता है और हम नई उम में प्रवेश कर जाते हैं, हमारा 4 महीने 5 महीने का गर्भ रेडी होता है, और उसमें आत्मा यहाँ से डेथ हुई वहां चली जाती है। मगर मान लो मेरी उम्र 40 साल है और मैंने 20 साल में जहर खा लिया, मैंने जबरदस्ती अपने शरीर को डैमेज कर दिया, तो मेरा उम रेडी नहीं है, मेरा गर्भ रेडी नहीं है, तो मैं 20 साल तक मुझे स्पेस में भटकना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इविल सोल। अपन इविल क्यों बोले, अपने ही भाई बहने उनको इविल नहीं बोलते, हम तो यही कहेंगे कि जिनके पास शरीर नहीं होता है, अव्यक्त जो आत्माएं हैं, ये इन आत्माओं का फोर्स सबसे ज्यादा होगा, और जो 500 करोड़ लोग जो मतलब मर जाएंगे, 500-600 करोड़ जो भी बम विस्फोट होगा ये सारी घटनाओं में जो मर जाएंगे, वो लोग त्राही माम करके चिल्लाएंगे, क्योंकि ये लोग योग नहीं कर रहे हैं, मतलब ज्ञान योग नहीं कर रहे हैं, तो इनके पाप भस्म नहीं हुए हैं, और पाप भस्म नहीं हुए हैं तो ऊपर नहीं जा सकते। तो एक एक कार में 35-35 ड्राइवर आ जाएंगे, आप सोचो एक कार में 2 ड्राइवर आ जाए तब भी कितनी मुश्किल हो जाए। तो बाबा ने एक मुरली में कहा, ये दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी, सारी दुनिया मतलब कई लोग मौत के लिए चीखेंगे कि हमें मौत आ जाए, और कोई किसी को मौत आ गई तो ऊपर मुक्ति के लिए मतलब तड़पेंगे, मुक्ति के लिए त्राहिमाम करेंगे, और उस समय के लिए गाया भी गया है मेरवा मौत मल्लू का शिकार, मतलब यहाँ तो मौत का तांडव नृत्य हो रहा है, और मतलब जैसे मेरवा मौत, मेरवा जो है ना मतलब मेंढक को कहते हैं, तो मेंढक को जब वो बाहर आते हैं तो बच्चे उसको पत्थर मार मार के मारते हैं, तो उसकी तो मौत होती है और वो बच्चे मजे करते हैं, मतलब उनको खुशी होती है। तो मतलब एक तरफ जय जयकार होगा, एक तरफ हाहाकार होगा, और ये जो ब्राह्मण आत्माएं हैं इनकी स्थिति से ही इन 700 करोड़ आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट पास मिलेगा। इस समय आपका रोल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी कितनी फुल बैटरी है, आपने कितना अपना खाता जमा किया है, तभी आप उस समय सकास देके जितनी आत्माओं को ऊपर पहुंचाओगे, जितनी आत्माओं को आप परमधाम पहुंचाओगे, जितनी आत्माओं को आप जेदान दोगे, जितनी आत्माओं को शांति किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणों से उनके पाप भस्म करके उनको वापस उनको मतलब परमधाम पहुंचाने की आप मेहनत करोगे, वो आपका फुल बैटरी, जो आपका एटीएम है, वो आपका जो जमा का खाता है वही काम आएगा। और ऐसे में हमारे लिए सेफेस्ट प्लेस है वो परमधाम है। अगर हम घर पे रहते हैं, हम योग करते हैं, 1000 एंगस्ट्रॉम एनर्जी है, मान लो एग्जांपल दे रही हूं मैं कि 1000 एंगस्ट्रॉम एनर्जी है, अगर हम सेंटर पे आके योग करते हैं तो हमारी 5 से 10,000 एंगस्ट्रॉम एनर्जी हमारी होती है वहां की और हमारा योग अच्छा लगता है। और अगर हम शांतिवन आके योग करते हैं तो 20 से 30,000 एंगस्ट्रॉम एनर्जी है बाबा कमरे में, तो वहां पे हमारा और अच्छे से योग होता है। और अगर हम पांडा भवन बाबा कमरे में योग करते हैं तो हमारी वहां का एनर्जी लेवल 50,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, मतलब उससे भी ज्यादा है, तो हमें बहुत अच्छा योग महसूस होता है, बहुत अच्छा अनुभूति होता है। और जब हम परमधाम रहते हैं तो हमारा इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी लेवल होता है, मतलब बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम परमधाम में हमारी बुद्धि टिकी रहती है तो हम सबसे पावरफुल स्टेज में होते हैं और वही हमारे सबसे ज्यादा पाप भस्म होते हैं, और वही न सिर्फ हमारे पाप भस्म होते हैं 700 करोड़ आत्माओं के पाप भस्म हो जाते हैं। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, मतलब चढ़ती कला मींस बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ही हम परमधाम में बुद्धि रूपी नेत्र से टिके हैं और बुद्धि में परमधाम में स्थित है, नीचे नहीं आ रहे बुद्धि से, तो हमारी ज्वालामुखी योग होता है और बाबा इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी है, बाबा के साथ हम कंबाइन हो जाते हैं, वो बिंदु है, वो है ना, वो गीत है ना, दूरी न रहे कोई पास इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ। तो इस तरह से अगर हम उसमें समा जाते हैं, उस बिंदु में समा जाते हैं, और मतलब मैं बाबा की बाबा मेरा, मतलब जिसे आपने तंदूर की भट्टी देखी होगी, भट्टी में कुछ भी डालो तो सुहा हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मान लो आपके घर में चाय बनानी है और आप मोमबत्ती से स्टील की तपेली पे चाय बनाओ, मोमबत्ती से बनेगी? पूरी जिंदगी बैठे रहो, क्योंकि उतना टेम्परेचर ही नहीं है। तो ये धरती, ये दुनिया इटर्नल लॉ पे चलती है। अगर आपने इतना स्ट्रांग, आपने परमधाम में आपकी बुद्धि टिकी नहीं रही तो आपके पाप भस्म नहीं होंगे, और पाप भस्म नहीं होंगे तो बाबा ने बताया 6 या 7 तरीके से आपके पाप भस्म होने, या तो बीमारी आएगी, या आपको जेल हो जाएगी, आपको कोर्ट कचहरी में फंस जाओगे, या पाई पाई के मोहताज हो जाओगे, कर्जदार हो जाओगे, या आप है ना मतलब अपने ये बच्चों से या अपने पति से या किसी से रिलेशनशिप में आपको शराबी है तो आपको रोज मार काट झगड़ा लड़ाई उसमें आपका हिसाब किताब चुकतू होता है, या हम बार बार गर्भ में आते हैं, मतलब एक दिन पैदा हुआ वापस मर गया, एक दिन मतलब पैदा हुआ वापस मर गया, बार बार जन्म मरण में आते हैं तभी हमारा हिसाब किताब चुकतू होता है, या अपर प्राकृतिक आपदाएं आती है जैसे 80 सेकंड में पूना जापान साफ हो गया तो हमारे सब नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फिनिश हो जाते हैं और 1 सेकंड में सारा तबाह हो जाता है, तब हमारा हिसाब किताब चुकता होता है, या हम एक्सीडेंट से या जले हुए वार्ड में चले जाते हैं तब हमारा हिसाब किताब चुकता होता है। तो या तो इस तरह से हिसाब किताब चुकतू करो, या बीज रूप में परमधाम में आप अपना पाप भस्म करो। अब कौन सा तरीका पसंद है, योग बल या भोग बल, इट इज अप टू यू। तो यहाँ पे जितना हम परमधाम में टिके रहेंगे, जितना हमारी बुद्धि परमधाम में टिकी रहेगी, उतना हमारा पाप भस्म होगा, और उतना हमारा, न सिर्फ हमारा, जैसे ही हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, हम बीज रूप में हम बाबा के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाला रूपी बिंदु में समा जाते हैं, हमसे इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी नीचे एमिट होती है, और उससे परमधाम में ऊपर जो 700 करोड़ का जहर है, सब आत्माओं के पाप भस्म हो जाते हैं, और वो सकास नीचे गिरता है तो 5 तत्व पावन हो जाते हैं। तो चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, जिसको परमधाम में रहने की अभी से आदत होगी, है ना, परमधाम में रहना, परमधाम में टिके रहना, ज्वालामुखी योग करना, बीज रूप बाबा के साथ कंबाइन हो जाना, जितना जितना ये अभ्यास होगा उतना उतना आपका जमा का खाता बनेगा। क्योंकि बाबा ने बताया है कि बीज रूप से ही हमारे पाप भस्म होते हैं, छोटे मोटे, ठीक है, ये अभ्यास भी करना है, फरिश्ता स्थिति रूरियान दिन भर में कर्मयोगी सारी आप प्रैक्टिस करो, उसमें मनाही नहीं है, उससे आपकी स्थिति बनेगी, मगर परमधाम में 4 से 5 बाबा कहता है पहले आप खूब अच्छे अच्छे सामान लो, अमृत वेला उठो, भगवान को पूरा थैंक्स दो, वरदानों से भरपूर हो, बाबा की जो भी अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे सामान याद करके फिर बुद्धि रूपी आप उससे 4 से 5 का समय हमारे अपने लिए होता है, जितना हम अपने पाप भस्म करेंगे हमारे साथ, हमारे सकास से 700 करोड़ आत्माओं के पाप ऑटोमेटिक भस्म हो जाते हैं, परम धाम में जैसे हमारी बुद्धि स्थिर होती है, स्थिर चित, क्योंकि बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, मीन्स परम धाम में कोई संकल्प नहीं होता है। इन द सेंस एक संकल्प में हम टिके रहते हैं, बस बाबा, क्योंकि या तो हमें आत्मा के संकल्प चलते हैं, या हमें परमात्मा के संकल्प चलते हैं, या ड्रामा के, भाई मुझे स्कूल जाना है, मुझे ये कॉपी चेक करनी है, या मुझे फोन करना है, ये सब ड्रामा के संकल्प है। तो 4 से 5 के समय हमारा ऐसा कोई काम होता ही नहीं है, तो उस समय हम परमधाम में आराम से टिक सकते हैं। और उस समय जितना आप उसमें टिके रहेंगे, उतना आपका मतलब ये आपका जमा का खाता बढ़ता चला जाएगा, और आपकी स्थिति ये ओवरनाइट नहीं होगा। तो उस समय ना आत्मा के मतलब मेरे को ये हो रहा, मेरे को सिर दर्द हो रहा, मेरे को ये, और आत्मा के जो भी संकल्प है वो भी नहीं चलने चाहिए, ड्रामा के भी संकल्प नहीं, सिर्फ मैं बाबा का, बाबा मेरा, मतलब आप बाबा में समा गए, उस दृष्टि, आपका तीसरा नेक, अंदर की आंख, उस बुद्धि रूपी नेत्र उस परमधाम में उस बाबा पे बिल्कुल स्थिर हो जाए, बिल्कुल टिक जाए, और आप उपराम हो जाए, उसमें लवलीन हो जाए, उसमें आप समा जाए, उसकी इनफाइनाइट एंगस्ट्रम एनर्जी से न सिर्फ आपके पाप बल्कि 700 करोड़ आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट पास मिल जाता है, और वो सब आत्माएं मुक्त हो जाती है। हमारी तपस्या से सारी दुनिया का भला हो जाता है, 500 तत्व पावन हो जाते हैं। तो हमारी मन की स्थिरता बहुत जरूरी है, इसलिए हमें सब कुछ समेटना जरूरी है। मैं आपको बता देती हूँ जमा का खाता क्या होता है, आप समझ लो। अगर हम किसी को एक थप्पड़ मारते हैं, मतलब अपने बच्चे को ही एक थप्पड़ मारते हैं, एक थप्पड़ मारा अपने बच्चे को, तो आपका मतलब ATM मान लो 1000 रुपया है, तो 100 रुपया पट से कट गया। 2 थप्पड़ मारे, 200 रुपये कट गए। अगर आपने 1000 रुपया किसी का खा लिया, उसको वापस चुकतू नहीं कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, आपकी नियत ही नहीं है, आप उसको उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको सता रहे हैं, उसको 1000 रुपया नहीं दे रहे हैं, तो भी आपका 100 रुपया पट कार्मिक अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। और अगर आपने किसी का सिर दबा दिया, किसी को खाना खिला दिया, किसी को आपने अटैची उठाने में मदद की, किसी को ट्रेन में जगह दे दी, किसी को आपने ऑपरेशन में आपने पैसे जमा करा दिए, किसी को आपने स्कूल की फीस जमा करा दी, तो पट 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 आपके ATM में 100 रुपया प्लस होगा, आपका 1100, 1200, 1300, 1400 ऐसे आपका प्लस होगा। और अगर आपने आप नेक्स्ट फ्लाइट है, आप पूरी की पूरी ट्रेन जला लेते हैं, आप अपने दमखम पे सबकी जमीनें हड़प लेते हैं, आप शराब पी के लेडीज पे अत्याचार करते हैं, तो आपके भागा हो जाता है, मतलब आपके 1000 रुपए बैलेंस है, तो भागा होके मतलब आपका 10 रुपीज बैलेंस है, कभी कभी ये माइनस में चला जाता है, ओवरड्राफ्ट। अगर आप जले हुए वार्ड में हो, अभी अगर आप जेल में हो, अगर आप एक्सीडेंटल वार्ड में हो, तो आप समझ लो आपका ATM माइनस में चल रहा है। और फिर अगर हम इस ज्ञान योग को समझ के हम 24 घंटा सकाश देने की सेवा करते हैं, शांति किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, आनंद की किरणें, हम मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क श्वास, अगर हम सारी दुनिया को सुख देते हैं, तो हमारे ATM में इंटू हो जाता है, और मतलब 1000 × 100 मतलब आपका लाख रुपए बैलेंस, 1 लाख 2 लाख ऐसे बढ़ता चला जाता है। और बाबा ने तो कहा है पदम गुना, पदम गुना माना, अगर हम 1 के आगे 0 लगाते हैं तो 10 होता है, 2 लगाते तो 100 सैकड़ा, और 3 लगाते तो 1000, है ना, ऐसे करते करते अगर हम अरबपति खरबपति बन जाते हैं, और पदमपति, पदमपति मतलब 1 के आगे 20 0, मतलब खरब के बाद आप 9 0 और लगा दो, तो हम 1 सेकंड भी अगर सकाश देते हैं, तो हमारा मतलब हमारा ATM जो है पद्मा पदम पति मतलब बन जाते हैं। 1 सेकंड भी हम इस धरती को सकाश देने की सेवा करते हैं, तो ये पूरी धरती के लिए बहुत वैल्यूबल मोमेंट होता है। हमारा एक एक श्वास, अगर हम जितना हम बाबा की याद में लवलीन रहते हैं, जितना हम सकाश देने की सेवा करते हैं, ATM फुल हो जाता है। तो हमें मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना, तो आपका ATM इतना फुल होना चाहिए, जो उस समय है ना, मैं आपको बता दूं विनाश के समय, उस समय आप कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक आत्मा है, उसको एक्सीडेंट हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद को मतलब हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी हड्डियां टूट गई है, तो डॉक्टर कहता है बाहर 2 लाख रुपए जमा कराओ, तब आप इनका ऑपरेशन होगा। अब वो कहे मेरे पास 2 लाख तो है नहीं, अभी कमाने जाओ, तो उस समय हड्डियां तो टूट गई है, 5 रुपए भी कमा पाएगा? बिल्कुल नहीं कमा पाएगा। तो उस समय इतनी हलचल होगी धरती में, इतनी मतलब पूरी धरती ट्विस्ट हो रही है, पूरी धरती में टेम्परेचर इतना हाई है, पूरी धरती में इतना माहौल हलचल में है, मन को स्थिर करना बाबा से, एक बूंद भी, एक ड्रॉप भी हम बाबा से हम एनर्जी नहीं ले पाएंगे। अभी का आपका जमा का खाता, अभी की आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, अभी की आपकी परमधाम रहने की स्थिति, ये आपकी काम आएगी। और जितना जितना आप उपराम रहेंगे, जितना जितना बीज रूप का अभ्यास करेंगे, जितना जितना सकास देने की, और समेटो है ना, ज्यादा कारोबार में बुद्धि फंसाओ नहीं। बाबा कहता है दो रोटी में दे दूंगा, बस दो रोटी से ज्यादा अपने को क्या चाहिए, ज्यादा संकल्प नहीं चलाओ। दिनचर्या में अगर संकल्प चलाएंगे तो फिर हम बीजरूप स्थिति में लगातार नहीं रह सकते। तो यू नीड प्रैक्टिस, अभ्यास चाहिए, त्याग चाहिए और उपराम अवस्था चाहिए। अगर आपको आपको बाहर की दुनिया से वैराग्य नहीं है तो आप परमधाम में लगातार टिके नहीं रह सकते, आपकी मन स्थिर चित्त नहीं हो सकता। तो आपको ये सारा अभ्यास करना है और आने वाला समय में है ना, जैसे ही 9 लाख लोग देवताएं नीचे आ जाएंगे और फिर पति है ना संदेशी का पार्ट चला रहेगा, यज्ञ में सिर्फ संदेशी का पार्ट रहेगा और बाकी पढ़ाई फिनिश हो रही है। और अभी हमें मतलब हमारे लास्ट मोमेंट है, जो समझ सके तो समझे, न जो ना समझे वो अनाड़ी। अभी भी अगर हमने अपने श्वासों श्वास एक एक सेकंड को हमने वैल्यूबल नहीं समझा और उसको हमने वेस्ट किया और वो हिसाब बनाने में और निगेटिव बातों में हमने अपने आप को इन्वॉल्व रखा, तो फिर हमसे हमें खून के आंसू रोने पड़ेंगे और उस समय अगर हमने सजाएं भोगनी पड़ेगी। अगर आपकी आपका आपका पाप भस्म नहीं हुआ तो आपको बहुत धर्मराज की सजाएं भोगनी पड़ेगी। तो मैं आपको अंत में एक ही बात कहूंगी कि चलती चाकी देख के देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, है ना, विनाश के समय एक भी दाना साबुत नहीं बचा। दूसरा एक और दोहा है उसके बेटे ने बनाया है प्रेम ने, कि चाकी चली प्रेम की पिस पिस आटा होए, लगे रहो कीली से भैया बाल ना बांका होए। जितना हम बाबा की याद में समाये रहेंगे, जितना हम दूसरों को सकास देने की सेवा करेंगे 24 घंटा है ना, शांति किरणें, सुख की किरणें आपके इस टॉप फ्लोर से पॉजिटिव एनर्जी हमें 100% आपकी एमिट होगी, तो ये धरती को उतना ही जल्दी परिवर्तन होगा, उतना ही सबको दुखों से मुक्ति मिलेगी। और जितने लोगों को आपने मुक्ति दिया वो लोगों आपको द्वापर में आपकी पूजा करेंगे। आप कहेंगे पूजा से हमारा क्या फायदा, जितना आपकी पूजा होगी द्वापर में आपकी आप सुखी रहेंगे, 63 जन्म तक आपको दुख नहीं आएगा, क्योंकि जितनी पूजा होती है उतनी ब्लेसिंग आपकी तरफ जाती है और आपका उस समय आपका भविष्य बनता है। एक हर जन्म का इस जन्म के में जो काम करते हैं वो द्वापर के बाद अगले जन्म में अपने को प्रारब्ध मिलती है। और जितनी कृष्ण की सबसे ज्यादा पूजा होती है तो देखो ना, लास्ट जन्म में ब्रह्मा बाबा कितना धनवान रहा और 90 साल तक कितना ना टेका लगाया ना चश्मा लगाया, कितना स्वस्थ रहा और उनका मौत भी कितना आसान रहा, उनका मन कितना हल्का था। तो तन मन धन उन्होंने लगाया, जितना उन्होंने इस यज्ञ के लिए सेवा किया तो उसका रिटर्न भी इतना है कि 84 जन्म वो इतना सुखी रहा। तो इट इज अप टू यू कि आप 84 सॉकेट भरते हैं या 75 सॉकेट भरते हैं या 63 सॉकेट भरते हैं या 42 सॉकेट भरते हैं या 4-5 सॉकेट भरते हैं। इट इज अप टू यू कि आप पावर बैटरी भर रहे हैं, आधी बैटरी भर रहे हैं, पोना बैटरी भर रहे हैं या फुल बैटरी भर रहे हैं। इट इज अप टू यू। तो हम चाहेंगे कि आप खूब पुरुषार्थ करें लगन से और अभी अपने पास एक एक सेकंड को अगर आपने यूज कर दिया तो ये आपके जीवदान होगा, आपके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अभी तोहफा होगा, जो आप बाबा के साथ हर संबंध निभा के हर तरह से सकास देने की सेवा करें। ओम शांति।
फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। कृष्ण कन्हैया था राधा सी, हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया था राधा सी, हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी नहीं। भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन भगवान। जहाँ पर आते हैं गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा।